जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जयो राधा मदन मोहन ललिता देवी राधा मदन मोहन ललिता देवी जयो गिरी गोवर्धन जयो गिरी गोवर्धन गिरी गोवर्धन जय गिरी गोवर्धन जयो राधा गोविंद पादा गोविंद राधे। श्रील रूप गोस्वामी प्राण धन हे, जयो राधा गोविंद पादा गोविंद राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जयो जयो प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जयो जयो गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निथाय गौर हरि बोल हरि बोल निथाय गौर हरि बोल। कलयुग पावन श्री हरि नाम संकीर्तन की, शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगनाललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन कथा के उत्सव पर। तो आज जैसे कि हम सब जानते हैं शुभ ये झूलन अवसर का शुभ आरंभ चल रहा है। कल से हमने झूलन यात्रा शुरुआत किया, तो आज दूसरा दिन है। और आज के दिन हमारे जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा के जो दो प्रमुख आचार्य हैं, एक गौरीदास पंडित और दूसरे हैं श्रील रूप गोस्वामी, और ख़ासकर श्रील रूप गोस्वामी पाद जो चैतन्य महाप्रभु के सबसे वरिष्ठ शिष्यों में से एक है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामय्यम ददाति स्वपदांतिकम, जो हमारे प्रार्थना के समय पर हम बोलते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम। तो रूप गोस्वामी कौन है? जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो मन का इच्छा था, श्री चैतन्य मनोभीष्टम। तो महाप्रभु की जो इच्छाएं थी, कौन सी इच्छा थी महाप्रभु की? चार इच्छाएं थी महाप्रभु की। वो था कि वृंदावन में जो कृष्ण लीला का जो स्थान था, वो सब कुछ लुप्त हो गया था, उस लुप्त हुए गए स्थान को पुनः से कोई उसको स्थापना करे, ये पहली इच्छा। दूसरी इच्छा थी महाप्रभु की, वो थी कि हर जगह पर कृष्ण लीला के वहाँ पर मंदिर होना चाहिए। तीसरा इच्छा था महाप्रभु का, वो था कि भक्ति क्या है और भक्ति कैसे करना चाहिए, उसके लिए वैष्णव ग्रंथ लिखना है, ये तीन। और चौथा इच्छा था महाप्रभु का कि वैष्णव अर्थात क्या, कौन समझ सकता है कि वैष्णव क्या है? तो आचरण, तो वैष्णव सदाचार क्या है, उसको किसी के माध्यम से महाप्रभु को बताना था। तो ये चार इच्छा को पूरा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे और श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। तो ये चार इच्छा का जो चैतन्य महाप्रभु का था, क्योंकि महाप्रभु हम जानते हैं कि केवल 8 श्लोक उन्होंने दिया हम सबको, जो हम सुबह रोज गाते हैं मंगल आरती के पश्चात श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम। तो महाप्रभु ने केवल 8 श्लोक लिखा, उसके आगे कुछ लिखा नहीं। लेकिन आगे चलकर जो महाप्रभु का इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, उसका जो पूरा जवाबदारी था महाप्रभु ने किसके हाथों में दिया? श्रील रूप गोस्वामी के हाथ में, कि मेरी जो इच्छा है जिसके लिए मैं इस भौतिक जगत में आया, उसका जो प्रमुख भार है मैं आपके ऊपर डालकर जा रहा हूँ, आप उसको आगे बढ़ाइए। तो रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के सारी इच्छाओं को समझकर और महाप्रभु से ही शक्ति, जो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को और अन्य भक्तों के माध्यम से बहुत सारा शक्ति प्रदान किया, क्योंकि ये जो शुद्ध भक्ति का जो परंपरा है, और खासकर इस कलयुग में 500 साल पहले, जबकि कलयुग शुरू होकर 4,500 वर्ष पूरा हो चुका है, तो इस घोर अंधकार का जो युग है कलयुग, इस समय पर शुद्ध भक्ति के सिद्धांत को प्रचार करना, उसका स्थापना करना, उसकी शुद्धता को बनाकर रखना, क्योंकि इतने सारे अलग अलग सिद्धांत है, कर्म ज्ञान योग इत्यादि, लेकिन उसमें भी मिश्र भक्ति, तो उस सब में भी शुद्ध भक्ति के सिद्धांत को स्थापित करना और उसको प्रचार करना, ये कोई आसान बात नहीं है। तो इसीलिए महाप्रभु ने खासकर रूप गोस्वामी को चुना और रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के दिए गए शक्ति के अनुसार इस श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। तो उन्होंने इस भूतल, इस धरातल पर महाप्रभु की इच्छा को पूरा किया अपने जीवन के पूरा, हम उनके जीवन के बारे में संक्षिप्त रूप में अगर हम देखेंगे तो, इसलिए स्वयं रूप कदामयम ददाति स्व पदांतिकम। इसलिए हमारा जो परंपरा है, हम सबको बताया जाता है कि रूपानुगा, रूपानुगा मतलब हमारे गौड़ीय परंपरा के जो प्रमुख आचार्य है वो है श्रील रूप गोस्वामी, और श्रील रूप गोस्वामी के बताए गए पद चिन्हों पर ही हम इस भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। जो किताबें रूप गोस्वामी ने लिखा है, रूप रघुनाथ पदे हुई बे आकूति, कबे हमें बुझा बोसी युगल प्रीति। तो कभी हम राधा और कृष्ण, जो वृंदावन के राधा श्याम सुंदर या राधा वृंदावन विहारी के प्रति हमारा आकर्षण कभी हम पुनः जागृत कर पाएंगे? जब हम रूप रघुनाथ पदे, जब श्री रूप गोस्वामी के प्रति जब हमारा आकर्षण जागृत होगा उनकी किताबों के माध्यम से, उन्होंने क्या लिखा है भक्ति के बारे में, तो जब वो आकर्षण स्थापना होगा हमारा उनकी किताबों के बारे में समझकर शुद्ध भक्ति का, जो भक्ति रसामृत सिंधु उनका प्रमुख ग्रंथ है और भी अन्य कई सारे ग्रंथ है, उन ग्रंथों के माध्यम से जब हम असली सिद्धांत को समझेंगे भक्ति सिद्धांत को, और उसके आधार पर जब अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तब हम वृंदावन तक, राधा कृष्ण राधा वृंदावन विहारी के चरण कमल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि रूप गोस्वामी कौन है आध्यात्मिक जगत में? श्रील रूप मंजरी। तो रूप मंजरी अर्थात जो अष्ट सखियों को असिस्ट करते हैं, तो अष्ट सखियां राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहते हैं, और सखियों को जो मदद करते हैं वो है मंजरियां। उसमें से प्रमुख दो मंजरी है, शिल रूप मंजरी जो शिल रूप गोस्वामी है, और जो रति मंजरी या लबंग मंजरी जो शिल सनातन गोस्वामी है। तो सारे हमारे जो षड गोस्वामी है ये सब अलग अलग मंजरी है, जो कृष्णा और राधा इनके दो निकट से रहकर वो हमें बताते हैं अपनी किताबों के माध्यम से कि किस तरीके से हमें अगर राधा कृष्ण के समीप नज़दीक जाना है तो हमें क्या सही शिक्षा अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसीलिए रूप गोस्वामी के बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बताते हैं कि बहुत सारे आचार्य आए और उन्होंने भक्ति के बारे में बताया, लेकिन रूप गोस्वामी सारे आचार्यों में से महान क्यों है? चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं क्योंकि भक्ति रस या कृष्ण के प्रति जो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के बारे में जो ज्ञान है ये एकदम डिटेल में केवल रूप गोस्वामी ने हमें बताया है। भक्ति पूर्वे श्रितम ताम तु रसम पश्येद आतदी तम नौमी सततम रूपम नाम प्रिय जनम हरे। तो बताते हैं कि रूप गोस्वामी कई आचार्य है लेकिन उसमें रूप गोस्वामी क्यों महान है, क्योंकि ये जो रस सिद्धांत का जो वर्णन है एकदम डिटेल में, इसको केवल श्रील रूप गोस्वामी ने हमें दिया है और कोई आचार्य ने ये दिया नहीं है। तो इसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु में देखेंगे तो हमें एक भक्ति सिद्धांत के बारे में हमें सीखने को मिलता है, पहला 16-17 अध्याय के बाद तक जो हम भक्ति शास्त्र के लिए प्रमुख रूप से पढ़ते हैं, और दूसरा जो भाग है वो है रस सिद्धांत। तो ये दोनों भक्ति सिद्धांत और रस सिद्धांत, तो ये श्रील रूप गोस्वामी ने एकदम क्लियरली ये रस क्या है, पांच मुख्य रस कौन सा है, सात गौण रस कौन सा है, और उसमें कैसे एक साधक जो है साधना भक्ति से रागानुगा भक्ति पे जा सकता है और फिर भाव भक्ति प्रेम भक्ति, तो ये सब चीज़ों के बारे में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं। तो इसीलिए जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कई सारे आचार्य हैं हमारे इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, लेकिन सारे आचार्यों में चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को एक विशेष पदवी दिया है, और सारे आचार्य भी रूप गोस्वामी को इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा के प्रमुख आचार्य करके उनको नियोजित करते हैं। तो इसीलिए रूप गोस्वामी का जो तिरोभाव दिवस है, खासकर बताते हैं आचार्य का एक आविर्भाव दिवस होता है और तिरोभाव दिवस होता है, लेकिन इन दोनों में से आचार्य का जो तिरोभाव दिवस है वो भक्तों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जब एक आचार्य का आविर्भाव होता है तभी हमें पता नहीं है कि उन्होंने क्या लीला किया, क्योंकि अभी अभी उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन उनके तिरोभाव के समय पर हमें पता चलता है कि एक आचार्य ने अपने जीवन का जो 50, 60, 70 वर्ष बिताया है उसमें उन्होंने क्या कुछ किया है हम सबका कल्याण के लिए। आचार्य अर्थात साधु अर्थात वो व्यक्ति जो पर दुख दुखी है, जो आचार्य का जो हृदय है इस आम जनता को जो माया के जाल में दुख भुगत रहे उनके दुख भरी अवस्था को देखकर वो रोते हैं, और वो हमेशा यही सोचते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किस तरीके से ये न के न प्रकारे न कि मैं इस डूबते हुए बद्ध जीवों को कृष्ण कथा के माध्यम से और कृष्ण कीर्तन के माध्यम से मैं इनको कृष्ण तक पुनः लेकर जा सकूं। तो इसीलिए आचार्य वो व्यक्ति है जो हमेशा हमारे लिए और हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए रोते हैं और हमको कृष्ण के नज़दीक लेकर जाने के लिए अलग 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 प्रबंध करते रहते हैं। तो आज उनमें से एक श्रील रूप गोस्वामी का हम तिरुभाव दिवस मना रहे हैं। तो संक्षेप में बताया है कि रूप गोस्वामी जिनका जो बचपन में जो नाम था वो था अमर, और सनातन गोस्वामी का नाम था संतोष। तो तीन भाई थे। तो कविराज गोस्वामी आदि लीला में बताते हैं इन तीनों के बारे में, अनुपम वल्लभ श्री रूप सनातन एई तीन शाखा वृक्षेर पश्चिम सर्वोत्तम। तो आदि लीला में एक अध्याय आता है जिसमें बताया है कि चैतन्य महाप्रभु रूपी जो वृक्ष है उनमें से अलग अलग शाखाएं और उपशाखाएं निकलती है। तो महाप्रभु रूपी ये वृक्ष में से जो 43, 44 और 45वां जो शाखा है, 43rd, 44th और 45th, वो है श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी और श्रील वल्लभ। तो ये तीनों का जो जन्म था, खासकर रूप गोस्वामी का, इनका जन्म हुआ था सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जो कर्नाटक में, और जो भारद्वाज गोत्र अर्थात जो भारद्वाज ऋषि थे उनके कुल से ही इनका जन्म हुआ था। और बताते हैं इनके पूर्वज के बारे में, प्रभुपाद एक तात्पर्य में बताते हैं कि इनके जो परदादा या उसके एक लेवल ऊपर का, उसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि 12वीं सदी में जो कर्नाटक के जो राजा थे उनका नाम था सर्वज्ञ जगत गुरु। तो बहुत बड़े वो यजुर्वेदी थे, बहुत चारों वेदों में वो निपुण थे, ब्राह्मण थे, और इतना उनका प्रभाव था कि सारे अन्य जो राजा थे वो इस राजा सर्वज्ञ जगत गुरु को अपना आदर सम्मान प्रकट करते थे। तो ये जो राजा थे इनके दो पुत्र थे, अनिरुद्ध रूपेश्वर और हरिहर। फिर उसमें से नेक्स्ट लेवल आया, अनिरुद्ध रूपेश्वर के और एक पुत्र, उनका नाम बताया है पद्मनाभ। फिर उसके बाद और एक लेवल नीचे पद्मनाभ के 5 पुत्रों के बारे में वर्णन किया है, और उसमें से सबसे जो छोटे पुत्र थे वो थे कुमार देव, और उनकी कन्या, उनकी पत्नी का नाम था रेवती। और ये कुमार देव और रेवती ने 3 पुत्रों को जन्म दिया जो बने अमर, संतोष और वल्लभ। तो ज़्यादा इनके बचपन के बारे में तो अधिक वर्णन कहीं पर भी दिया नहीं है, और बताते हैं कि इनका जो सुंदरता के बारे में बताते हैं कि इनके अंदर, जैसा कि हम भगवान के बारे में श्लोक बोलते हैं, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशश्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणं भग इतिंगणा। तो ऐश्वर्य, जिनके पास बहुत सारा धन है, तो इनके पास भी ऐश्वर्य संपत्ति बहुत सारी थी, वीर्यस्य बहुत ताकतवर थे, यशः बहुत यशस्वी थे, श्रीय दिखने में बहुत ही सुंदर थे, और ज्ञान बताया जाता है कि उस समय पर जो अलग अलग भाषाएं थे सब भाषाओं का ज्ञान इनको था, अलग अलग जो पर्शियन अरबिक ये सब भाषाओं का ज्ञान श्रील रूप गोस्वामी को था। तो ज़्यादातर इस संसार में किसी के पास भी ये ऐश्वर्य में से एक भी होता है तो साधारण उसका होता है कि वो व्यक्ति बहुत घमंडी हो जाता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एद मान मद अपमान, कुंती महारानी बोलती है। अगर किसी के पास बहुत ऊंचा जन्म है या बहुत कोई ऐश्वर्यशाली, बहुत पैसा है, सुंदरता है या बहुत ही विद्वान है, एद मान, तो वो पैर उसका जमीन पे नहीं रहता है, उसको बहुत गर्व होने लगता है। लेकिन रूप गोस्वामी के बारे में बताते हैं कि ये सब ऐश्वर्य होने के बावजूद इनके अंदर एक बहुत बड़ा गुण था, वो था ये बहुत ही नम्र थे। इसीलिए श्रीनिवास आचार्य बोलते हैं, धीरा धीर जन प्रियो प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो, क्योंकि इनका ये गुण था, इसके लिए धीरा अधीर जनप्रियो। तो जो गुंडे वाले लोग थे और जो सादा लोग थे, दोनों लोग जब रूप गोस्वामी के संपर्क में आते थे तो उनका हृदय पिघल जाता था। खासकर कोई जिसका कोई गुंडा जैसा व्यक्ति है, जगाई मदाई जैसा, लेकिन इनका स्वभाव देखकर वो पिघल जाते थे। कोई मारने आ रहे हैं लेकिन इनको देखकर ही नम्र हो जाते थे। तो ऐसे सारे लोग जो थे इनसे आकर्षित होते थे इनके गुणों को देखकर। तो इसीलिए उस समय पर जो बंगाल में जो मुगल राज्य था और वहाँ के जो मेन राजा थे नवाब हुसैन शाह, वो अलग अलग जगह पर राज्य करना चाहते थे, और उन्होंने जब सुना यहाँ वहाँ से कि ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है, ये लोगों का पूरे ब्राह्मण समाज के ऊपर उन लोग राज्य करते हैं। कैसे राज्य करते हैं? क्योंकि उनका गुण इतना अच्छा था कि सारे लोग इनसे आकर्षित होते हैं। ये लोग कुछ बोलेंगे तो सारे ब्राह्मण समाज लोग इनकी बात सुनेंगे। तो राजा को पता था कि अगर इस कर्नाटक के ब्राह्मणों के ऊपर हमें जय प्राप्त करना है तो केवल दो लोगों को अगर हम अपनी राज्य में नियुक्त कर लेंगे तो सारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो हमारे अंदर आ जाएंगे। तो उन्होंने आकर ये प्रस्ताव किया कि आप जो है दोनों अमर और संतोष, आप मेरे राज्य में नौकरी पर आ जाओ। एक को मैं प्रधानमंत्री की पद दूंगा और दूसरे को मैं वित्त मंत्री का पद दूंगा। तो बहुत बड़ा पद है। हम सोच सकते हैं कि अगर कोई राजा आकर किसी को बोल रहा है कि आपको प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, बहुत ऊंचा पद है उसके राज्य में, अर्थात राजा के बाद वही दूसरा और तीसरा पद है, तो ये दोनों पद देने के लिए वो उत्सुक था। लेकिन जब इन्होंने सुना कि नवाब हुसैन शाह ने ऐसा दो ऊंचा पदवी दिया है, इनको थोड़ा भी इच्छा नहीं हुआ उस पद को प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी सोचते थे कि हमारा जो जीवन है वो पूरा चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगने के लिए हमारा जन्म हुआ है। हम इस म्लेच्छ राजा के यहाँ पर नौकरी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके वहाँ पर नौकरी करेंगे तो उस राजा का संग करना पड़ेगा और उससे भी हमारा मन दूषित होगा, और राजा जो वेतन देगा वो वेतन भी दूषित होगा। क्यों? क्योंकि राजा स्वयं गाय का मांस खाता है, राजा स्वयं सारे ब्राह्मणों को तकलीफ देता है, तो उसका संग करना भी पाप है और उसके हाथों से जो वेतन मिलेगा उसको भी इस्तेमाल करना स्वयं के लिए और परिवार के लिए, ये दोनों पाप का लक्षण है, तो इसीलिए हमें नौकरी नहीं करना है। तो उन्होंने बोल दिया। लेकिन राजा को जब पता चला कि इनको इच्छा नहीं है, तब राजा ने धमकी दिया। नवाब हुसैन शाह ने क्या कहा कि अगर आप लोग मेरे यहाँ पर नौकरी नहीं करेंगे तो मैं प्रतिदिन यहाँ पर जो एक एक ब्राह्मण है वो एक एक ब्राह्मणों को मैं मारता चला जाऊंगा। तो जब ऐसा उन्होंने धमकी दिया तो इन दोनों के पास अभी कोई चारा नहीं था। चाहते न चाहते हुए भी इन दोनों को नवाब हुसैन शाह के यहाँ पर नौकरी करना पड़ा। और फिर वो लोग जा रहे थे अभी नौकरी के लिए, और उनके माता-पिता जब उन्होंने देखा कि हमारे दोनों बच्चे जिनको हमने जन्म दिया चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में पूरा सेवा करने के लिए, लेकिन राजा ने घुमा फिरा कर हमारे दोनों बच्चों को धमकी देकर न चाहते हुए भी अभी हमें उनके वहाँ पर नौकरी करना पड़ रहा है, तो ये दोनों जाने के बाद इनके माता-पिता को बहुत बुरा लगा। तो हम सोच सकते हैं माता-पिता भी कितने महान हैं। आज के तारीख में अगर कोई माता-पिता को पता चलेगा कि बच्चों को प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का नौकरी मिल रहा है, सारे माता-पिता उत्सुक हो जाएंगे। अरे बच्चा कौन है तुम्हारा? प्रधानमंत्री। दूसरा बेटा वित्त मंत्री। तो बहुत ही ऐसा कॉलर ऊंचा करके बोलेंगे। लेकिन रूप और सनातन गोस्वामी के जो माता-पिता थे, हाँ, कुमार देव और रेवती, उनको थोड़ा भी गर्व नहीं लग रहा था कि हमारे ये दोनों बच्चे दोनों बड़े पदवी पर जा रहे हैं। उन्हें रोने आ रहा था। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था ये भौतिक पदवी और इसके चक्कर में हमारे बच्चे कहीं दूषित ना हो जाए, राजा के संग में रहकर कहीं पाप कार्य न करे। तो माता-पिता रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वो चाहते थे कि हमारे बच्चे भगवान के अच्छे भक्त बने। बड़े पदवी पर जाएंगे नहीं जाएंगे दूसरी बात है, भगवान के अच्छे भक्त बनेंगे उसके बाद धार्मिक धर्म धर्म के अनुसार कुछ कार्य करेंगे तो ठीक है, लेकिन ये राजा के संग में होने से, क्योंकि राजा अधर्मी है और जिसका आप संग करेंगे, असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। वैष्णव के लिए सबसे बड़ा जो संदेश है वो है संग किसका कर रहे हो। तो हमारे बच्चे राजा का संग करेंगे और राजा उनके बॉस है तो बहुत बड़ा तकलीफ आगे आ सकता है, हमारे बच्चों का मन कहीं बदल जाएगा तो हमें डर लग रहा है। तो उस दिन के बाद उनके माता-पिता जो थे सुबह से रात तक ब्राह्मणों को बुलाए, यज्ञ दान तपस्या इत्यादि किया और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, हमारे ये दोनों बच्चे न चाहते हुए भी अभी राजा का संग करेंगे, कृपया करके हमारे बच्चों का मन जो है वो दूषित नहीं होना चाहिए, इस राजा के संग में, और कृपया करके जल्द से जल्द हमारे दोनों बच्चों को आप नवाब हुसैन शाह के चंगुल से बाहर निकालिए, ताकि वो लोग चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लग सकते हैं। ऐसे करके वो प्रार्थना कर रहे थे। फिर ये दोनों चले जाते हैं वहाँ पर बंगाल में राजा के यहाँ पर नौकरी करने के लिए। लेकिन रूप गोस्वामी का जो हृदय दोनों भाइयों का, हमेशा वृंदावन के लिए उन लोग तड़पते थे, तो इसीलिए वहाँ पर रामकेली स्थान पर उन्होंने एक गुप्त वृंदावन का निर्माण किया। जैसा कि हम जानते हैं 5 अलग अलग तरीके का वृंदावन के बारे में, गोलोक वृंदावन जो गोलोक वृंदावन में, भौम वृंदावन जो यहाँ पर 5000 साल पहले जब भगवान आए थे उसको भौम वृंदावन, दृश्यमाना वृंदावन जो वृंदावन भगवान जाने के बाद आज जो उपलब्ध है वो है दृश्यमाना, हृदय स्थित वृंदावन जो एक शुद्ध भक्त के हृदय में होता है वो है हृदय स्थित वृंदावन, और 5वां तरीके का वृंदावन है वो है गुप्त वृंदावन, अर्थात एक शुद्ध भक्त की इच्छा से जो वृंदावन होता है वो गुप्त वृंदावन। हम देख रहे गोवर्धन कृषि क्षेत्र, तो यहाँ पर जो हमने अलग अलग प्रोजेक्ट बनाया है, लेकिन इसका जो हार्ट है, जो हृदय है, वो है गुप्त वृंदावन जो यहाँ पर महाराज ने प्रमुख रूप से बनाया है। तो इसका ओरिजिनल जो हम देखते हैं, रूप गोस्वामी ने ऐसा गुप्त वृंदावन का जो निर्माण है वहाँ पर रामकेली में वहाँ पर बनाया था, और वहाँ पर जाकर सेम जो उनसे ही हमने सीखकर, जो रूप गोस्वामी ने आचार्य के रूप में बनाया, और अलग अलग आचार्यों ने भी बनाया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बनाया, और एक राजा बीरमवीर ने बनाया वान विष्णुपुर में। तो ये अलग अलग उदाहरण है गुप्त वृंदावन का, जहाँ पर यमुना, गोवर्धन और जो भी मुख्य वृंदावन का मंदिर है, ये सब कुछ एक छोटे छोटे स्केल पर जैसा हम भी बनाया है, तो ऐसे रूप गोस्वामी ने रामकेली में बनाया। और प्रतिदिन उनका कार्य, जो राजा के यहाँ पर नौकरी जाने के पहले और शाम को नौकरी से आने के बाद, ये दोनों समय पर गुप्त वृंदावन में रहकर वो कथा कीर्तन और भजन में अपने पूरा वैष्णव के संग में रहते थे पूरा, और बीच के समय पर वो राजा के यहाँ पर नौकरी कर रहे थे। तो ऐसा उनका पूरा जीवन बीत रहा था, लेकिन हमेशा मन में इच्छा हो रही थी कि सुबह और शाम हम लोग केवल कथा कीर्तन कर रहे इस गुप्त वृंदावन में, लेकिन दिन में जो 7-8 घंटा है वहाँ पर तो हमें इस पापी राजा का संग करना पड़ रहा है, तो उसमें तो हमारा मन दूषित हो रहा है। 24 घंटे में 8-10 घंटे हम राजा के यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, हमारा मन दूषित हो रहा है, तो हम जो है इसको भी छोड़ना चाहते हैं, बस अभी बहुत हो गया। और महाप्रभु को पत्र के ऊपर वो पत्र लिखते जा रहे कि महाप्रभु बस हम अभी थक गए, हम राजा का संग नहीं करना चाहते, कृपया करके आप हमें आदेश दीजिए आगे हम क्या कर सकते हैं। तो महाप्रभु ने इतने सारे पत्रों में से केवल एक पत्र का उन्होंने उत्तर दिया, बहुत सारे पत्र तो महाप्रभु ने देखा भी नहीं, देखने के बाद भी अनदेखा किया, लेकिन एक पत्र का उत्तर उनको आया जहाँ पर महाप्रभु बोल रहे हैं, एक महाप्रभु उदाहरण दे रहे कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री है, वो अपने पति से प्रेम, जो अपने पति से प्रेम करती है, लेकिन अपने पति को छोड़कर अगर उसका कोई एक दूसरे पुरुष के साथ कुछ अव्यवाहित कुछ संबंध है प्रेम का, तो ये जो पत्नी है अपना घर का कार्य बड़े अच्छे से निभाएगी, ताकि घर वालों को कहीं पर भी शक नहीं होना चाहिए कि उसका कहीं बाहर किसी के साथ कुछ प्रेम चल रहा है, लेकिन हृदय में हमेशा वो अपने प्रेमी को याद करते रहेगी। ऐसे करके महाप्रभु ने एक लेटर में लिखकर रूप गोस्वामी को भेज दिया। तो रूप गोस्वामी ने जब ये सुना और पढ़ा तो उनको मैसेज मिल गया कि महाप्रभु अभी हमें बता रहे हैं कि बाह्य दृष्टिकोण से हमें ये राजा का सेवा करना है, अच्छा लगे या ना लगे, जो बोला है उसको करना है, लेकिन अंदर हृदय में महाप्रभु का संग, जो उन्होंने उदाहरण दिया कि पति के अलावा और कोई प्रेमी, तो और कोई प्रेमी अर्थात महाप्रभु बता रहे कि मुझे या कृष्ण से तुम प्रेम करते हो, तो अंदर से आप मुझसे प्रेम करो, लेकिन बाहर से जो आपकी जवाबदारी है उसको आपको निभाना है। यही महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को भी बताते हैं। जब रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े इच्छुक थे कि मुझे सब कुछ छोड़ना है और वैरागी बनना है, और बार बार घर से भाग रहे थे, तब उनके माता पिता ने उनके ऊपर अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड लगाया। तब महाप्रभु को जब वो मिले और उन्होंने बोला, तब महाप्रभु ने उनको बोला, मरकट वैरागी मत बनो तुम, अभी जो है एक साधारण जैसा एक इंद्र भोगी का व्यक्ति अपने घर में रहता है, उसी की तरह आप भी घर में रहो, सही समय पर आपको रास्ता मिल जाएगा। तो आप एकदम घाई करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। स्थिर हो या घरे जाओ ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाई लोक भव सिंधु कुल। तो आप स्थिर हो जाओ, एकदम आप इसमें लग रहे हो कि आपको एकदम घाई घाई करना है, आपको वहां पर जाना है, लेकिन अभी नहीं, उचित समय पर आने पर हो जाएगा। तो महाप्रभु ने भी रूप और सनातन गोस्वामी को यही कहा, लेकिन महाप्रभु सोच रहे थे कि चलो अभी हम समय आ रहा है कि हम रूप और सनातन गोस्वामी जिन्होंने इतना सारा खत हमें लिखा है उनको जाकर एक बार मिलकर आते हैं, ताकि उनका जो जीवन है जो पूरा अभी चला गया है मेरे विरह में, उनको मैं थोड़ा आश्वासन दे के आऊँगा। तो महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए निकले थे, तो महाप्रभु कई बार वृंदावन जाने का प्लान बनाया, लेकिन एक दो बार उनका प्लान चौपट हो जाता है। पहली बार जब महाप्रभु ने हरिनाम का दीक्षा लिया था गया में ईश्वरपुरी से, उसके बाद महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए निकले थे हरे कृष्ण महामंत्र जप करते करते, तभी आकाशवाणी आई ऊपर से कि महाप्रभु अभी आपका तो मिशन सबको बांटना है, आप अगर चले जाएंगे वृंदावन तो फिर बाकी वृंदावन आप सबको कैसे दे पाएंगे। तब तो महाप्रभु का प्लान कैंसिल किया। फिर दूसरी बार संन्यास लेने के बाद कटवा में से महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनके प्लान को मोड़ कर उनको शांतिपुर की ओर भेज दिया, तो दूसरी बार भी महाप्रभु का प्लान कैंसिल हो गया। अभी तीसरी बार महाप्रभु सोच रहे कि मैं वृंदावन जाऊंगा वया राम के लिए, तो उस प्लान से महाप्रभु निकलते हैं जगन्नाथ पुरी से और कीर्तन करते करते वो राम के लिए की ओर आ रहे। तो जहाँ पर भी महाप्रभु रुक रहे कीर्तन कर रहे, हजारों लाखों भक्त महाप्रभु को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का जो सुंदरता है 6.5-7 फुट और ऊपर से सुनहरा राधा रानी का जो कॉम्प्लेक्शन, गोल्डन सुनहरा अंग, और दोनों हाथ ऊपर करके नृत्य कर रहे। तो महाप्रभु कीर्तन करते करते जाते थे, किसी व्यक्ति को देखते थे और केवल दृश्य के माध्यम से ही उस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम वो दे देते थे, और कुछ लोग को महाप्रभु आलिंगन करते थे और उसके माध्यम से उस व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का जो शक्ति था उसको वो संचार देते थे। तो ऐसे करते करते महाप्रभु जहाँ पर भी कीर्तन करते करते जा रहे थे, महाप्रभु की चरण धूलि लेने के लिए हजारों लोग वहाँ पर कूद पड़ते थे, और बताते हैं हर एक जगह पर बहुत बड़ा ऐसा खड्डा खड्डा खड्डा, सब जगह पर ऐसा खड्डा होते जा रहा था। तो ऐसे करते करते महाप्रभु पहुंचे थे उस समय पर राम के लिए, और नवाब हुसैन शाह को खबर मिलती है, तो एक जो पुलिस सिपाही है वो नवाब हुसैन शाह को ये संदेश देता है कि ऐसा ऐसा एक जो है साधु व्यक्ति आपके राज्य में आया है, लेकिन इतना सुंदर है वो दिखने में, इतना कद ऊंचा है और आंखें उसकी कमल नयन की तरह, और ऐसे करके एक एक अंग का वर्णन देते हैं, उनका छाती बहुत ही चौड़ा है और हजारों लाखों लोग उस व्यक्ति के पीछे आ रहे हैं ऐसे करके। तो राजा सोच रहा है अरे कौन व्यक्ति है, तो राजा का वहाँ पर एक जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है एक केशव खान करके, जो केशव खान था वो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, जो भक्तों का एक भक्त जैसे ही था, सबके लिए बहुत अच्छा कार्य करता था। तो केशव खान को पता चला कि अगर राजा मुझे पूछेगा तो मैं सच बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने सच बात बता दिया तो राजा जो है चैतन्य महाप्रभु को हानि पहुंचा सकता है। तो राजा ने पूछकर केशव खान को पूछा कि ये कौन है, ये जो व्यक्ति है जिसके बारे में मैं सुन रहा हूँ अलग अलग जगह से। तो केशव खान बोलते हैं कि नहीं, ये तो एक कोई मामूली सन्यासी है, कुछ लोग इसके पीछे जा रहे, ऐसे कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है, बस ऐसे ही। तब राजा नवाब हुसैन शाह ने केशव खान को पूछा, आप बोल रहे हो कि एक साधारण सन्यासी है, हजारों लाखों लोग इनके पीछे जा रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को एक दिन का वेतन नहीं दूंगा तो आप लोग मेरे लिए नौकरी नहीं करेंगे, आप लोग सब पैसे के लिए मेरे पीछे हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो लाखों लोगों को अपने पीछे खींच रहा है और एक पैसा तन का नहीं दे रहा है और दिन रात इसके पीछे पागल है, मतलब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर कोई एक व्यक्ति लाखों लोगों को प्रभावित कर पा रहा है, जिसके लिए वो अपना जीवन देने को तैयार है, इसका अर्थ यही है कि ये कोई बड़े महापुरुष है। और मेरे नज़र में ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है, वही ये कर सकते। फिर भी राजा फिर आकर रूप गोस्वामी को पूछते कि ये व्यक्ति कौन है। तब रूप गोस्वामी बोलते हैं कि ये व्यक्ति वही है जिसके वजह से आप इस राजा की पद पर बैठे हैं, तो जो भी आप कार्य कर पा रहे हैं ये इनकी कृपा से चल रहा है। तो आपको स्वयं पता होना चाहिए ये व्यक्ति कौन है, तो आपको मुझे पूछने का जरूरत पड़ना ही नहीं चाहिए ऐसे करके। तब फिर राजा जो है कि आदेश देते हैं कि ये जो व्यक्ति है इनको जो भी कीर्तन करना है, जो भी कार्य यहाँ पर करना है, इनको करने दीजिए। क्योंकि इसके पहले राजा जो थे, क्योंकि वो मुगल राजा थे, तो इसीलिए हिंदू के लिए जो भी धर्म का कार्य था, घर के अंदर जो भी चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बाहर आकर कोई अपने धर्म के लिए, जो मुस्लिम धर्म के अलावा कोई दूसरे धर्म का प्रदर्शन कर रहा है, तो राजा परवानगी नहीं दे रहा था। लेकिन आज उसने ये सब होने के बाद उसने बता दिया कि जो भी हिंदुओं का जो कार्यक्रम है, उत्सव है, कीर्तन है, यहाँ पर चलने देना चाहिए और उसके लिए हम लोग कहीं पर भी कुछ पाबंदी नहीं रखेंगे। तो ऐसा करके वो कर दिया। तो वो सब होने के बाद फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को लगा कि अभी चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए हैं, हमने इतना सारा पत्र लिखा है, अभी उनसे मिलने का समय आ गया है। तो रात के समय पर घनघोर अंधकार और कोई भी लोग नहीं थे वहाँ पर, उस समय पर रूप और सनातन गोस्वामी ने सोचा कि हम लोग जाकर चैतन्य महाप्रभु को मिलेंगे और उनसे प्रार्थना करते हैं हमारी पतित अवस्था के बारे में। तो अपने दोनों दांतों के बीच में तृण, तो दांतों के बीच में तृण को रखना अर्थात एक नम्रता का एक भावना है, तृणाद अपि सुनिचेन, तो तृण से भी अधिक नम्रता को दर्शाने के लिए उन्होंने अपने दांतों के बीच में तृण को रखा। और प्रथम महाप्रभु पीछे थे, आगे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर थे, उन दोनों को पहले मिले, उनको दंडवत प्रणाम किया और बाद में फिर हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से कहा कि रूप और सनातन गोस्वामी ये दोनों यहाँ पर उपस्थित है। और जैसे ही महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी को देखा, बहुत ही संतुष्ट हो गए और उनको आलिंगन करने के लिए वो आ रहे थे, लेकिन रूप और सनातन गोस्वामी इतने नम्र थे कि वो महाप्रभु को बोल रहे कि जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय पतित पावन जय जय महाशय, कि आप जो है चैतन्य महाप्रभु, आप पतितों के पावन है और हम लोग कौन है, नीच जाति नीच संगी करी निज काज, तोमारा अग्रे ते प्रभु कही ते वाजी लाज, कि हमको शर्म आ रही है आपके सामने कहने के लिए, क्योंकि हमारा जो संग है वो बहुत ही बेकार संग है, हम ये राजा जो अधर्मी है उसका हम संग कर रहे हैं, तो हमसे बड़े पापी और कोई भी नहीं है। मत तुल्यो नासी पापात्मा मद अपराधी न कश्चन परिहारे अपि लज्जा में किं ब्रूवे पुरुषोत्तम, कि हमसे बड़ा पापी और हमसे बड़े अपराधी और कोई भी नहीं है, हमें लज्जा आ रही है आपके सामने आने के लिए, तो कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए। कि आप है पतित पावन और आपको अगर पाव आपका नाम को सार्थक करना है तो आप हम दोनों को कृपा दे दिए। जगाई मधाई ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन इन्होंने कोई पापी व्यक्ति का सेवा नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, एक पापी व्यक्ति का सेवा किया है, इसीलिए हमसे बड़ा पापी इस संसार में और कोई भी नहीं है। तो इन दोनों का जो दयनीयता था ये देखकर चैतन्य महाप्रभु का जो हृदय है उन्हें बहुत ही ठेस पहुंच रही थी। तब महाप्रभु ने कहा कि जो उनको राजा ने, जो मुगल राजा ने पहले दबीर खास और सकार मलिक का नाम दिया था, तो बचपन में संतोष और अमर नाम था, फिर राजा ने उसके यहाँ पर नौकरी करते समय दबीर खास और सकार मलिक दिया, अभी महाप्रभु ने ये श्लोक कहकर उनको पुनः दीक्षा दिया। आजी है ते दुहार नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ी तो मार दैन्य फाटे मोरा मन। तो महाप्रभु ने कहा कि आज से आपका नाम है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, और आप ये दैन्यता जो है दांत के बीच में आप तृण को लेकर आए, और जो भी आप सच्चे हृदय से, तो वो जो भी बोल रहे थे अपनी पतित अवस्था के बारे में, ये नहीं था कि बाहर से बोल रहे थे, उनको वास्तव में अपने हृदय में वो महसूस हो रहा था कि हम लोग बहुत ही पापी व्यक्ति है। इतना भौतिक दृष्टिकोण से महान होते हुए भी अंदर हृदय में उन्हें लग रहा था कि वो बहुत बड़े पापी है। तो महाप्रभु ने इनके हृदय की भावना को देखा और महाप्रभु को लगा कि वास्तव में ऐसा जो नम्रता का प्रदर्शन है इनके सिवाय और कोई नहीं कर सकता। और आगे चल के भी महाप्रभु बताते हैं भक्तों को कि जब मैं इन दोनों को मिला, इनका गुण को देखकर मैंने विचार किया कि इनको मैं अपना शक्ति पूरा प्रदान करूंगा। ये महाप्रभु आगे पुरी में जाकर भक्तों को कहते हैं। फिर वहां से फिर महाप्रभु सोचते हैं अभी हम आगे चलकर जाएंगे। तो उस समय पर सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बोलते हैं कि आप जो है यहाँ से वृंदावन जाने का प्लान बना रहे हो, लेकिन वृंदावन अगर आपको जाना है तो केवल कुछ गिने चुने भक्तों के साथ जाइए, क्योंकि इतने भीड़ भाड़ में अगर आप वृंदावन जाएंगे तो आपको आनंद नहीं आएगा। तो महाप्रभु वहां से निकलते हैं और फिर जब रामकेली से कन्हई नाटशाला पहुंचते हैं, वो भी एक वृंदावन का ही पूरा महाप्रभु को महसूस होता है। तो महाप्रभु को लगता है अरे यार ये वृंदावन जैसे है, लेकिन वहां पर जब महाप्रभु देखते हैं सारे भक्त लोग हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, कुछ जगह पर कुछ पेड़ टूट गया, कोई डाली पर लटक रहा है, तब महाप्रभु को मन में याद आया कि जो सनातन गोस्वामी ने मुझे रामकेली में कहा कि भीड़ भाड़ के साथ वृंदावन जाएंगे तो आपको आनंद नहीं आएगा, तो मुझे अकेले जाना चाहिए। तो उस समय पर महाप्रभु सोचते हैं कि इस बार अभी मैं वृंदावन जाने का प्लान है उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। वहाँ से ही महाप्रभु रिटर्न में जगन्नाथपुरी के लिए लौट जाते हैं, और महाप्रभु लौटने के बाद फिर रूप गोस्वामी अभी सोचते हैं अभी रिजाइन देने का टाइम आ चुका है, अभी महाप्रभु ने हमें परमिशन दे दिया ग्रीन सिग्नल। तो उसके बाद तुरंत रूप गोस्वामी अपना रेजिग्नेशन देते हैं और फिर सनातन गोस्वामी को बोलते हैं आप भी जो है जल्द से जल्द रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि महाप्रभु ने हमारे लिए बहुत सारा सेवा सोच कर रखा है। तो रूप गोस्वामी को जब पैसा मिलता है, बताता है कि पूरा बड़ा नाव भर के सोने का सिक्का, इतना पैसा उनको मिलता है, और रूप गोस्वामी ने उसका जो 50% जो पैसा था वो प्रचार के लिए, वैष्णव सेवा के लिए इस्तेमाल किया, और 25% घर वालों के लिए, और 25% अगर कोई इमरजेंसी आया, जैसे सनातन गोस्वामी के लिए इमरजेंसी लगेगा, तो रूप गोस्वामी ने 10,000 सोने का सिक्का एक व्यक्ति को देकर रखा अगर सनातन गोस्वामी को कल जरूरत पड़े तो। ऐसा कहकर वहां से निकल गए रूप गोस्वामी, और वहां से वो प्रयाग में गए, वो और अनुपम। तो प्रयाग में वहां जाने के बाद महाप्रभु को वहां पर मिलने वाले थे, क्योंकि महाप्रभु रूप गोस्वामी को वहां पर शिक्षा देने वाले थे, रूप शिक्षा 10 दिन के लिए। तो प्रयाग में जैसे ही रूप गोस्वामी जाते हैं वहां पर देखते हैं बिंदु माधव मंदिर, और प्रयाग में खासकर त्रिवेणी, गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का मिलन वहां पर है। तो वहां पर वो महाप्रभु को देखते हैं कीर्तन कर रहे हैं संगम के वहां पर, और बिंदु माधव मंदिर में कीर्तन कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी और वल्लभ दोनों वहां पर अंदर जाते हैं और महाप्रभु को देखकर वो ये श्लोक बोलते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः, के नमो महावदन्याय, के आपका जो ये अवतार है ये सबसे दयालु का अवतार है। क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदायते। बहुत सारे भगवान कृष्ण के अवतार तो आए, लेकिन महाप्रभु क्यों महावदन्याय? क्योंकि ये जो कृष्ण प्रेम है, जो गोलोक वृंदावन का सबसे बड़ा धन है, ये केवल चैतन्य महाप्रभु ने ही सब लोगों को बांटा है, और किसी ने भी ये सबसे बड़ा धन को आज तक सबसे ऊंचा चीज सबसे नीचे गिरे हुए लोगों को केवल एक ही अवतार ने दिया। तो इसीलिए कृष्ण के अलग अलग अवतारों में महाप्रभु का जो स्थान है हम सबके लिए बहुत ही ऊंचा है, क्योंकि बहुत बड़ा उन्होंने हमारे लिए कृपा किया है। कृष्ण प्रेम प्रदायते, स्वयं कृष्ण है, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः, ऐसा श्लोक कहा। और फिर वहां पर प्रयाग में वल्लभ भट्ट भी आते हैं चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, वो कृष्ण कथा करते हैं बहुत समय के लिए। फिर वल्लभ भट्ट रूप गोस्वामी को मिलने के लिए आते, लेकिन रूप गोस्वामी उनका दयनीयता है, वो बोलते हैं मुझे छूना मत आप, क्योंकि मैं बहुत ही प्यापी व्यक्ति हूँ और आप बहुत बड़े ब्राह्मण परिवार से आते हैं। तो वल्लभ भट्ट बोलते हैं आप अपने आप को पापी बोल रहे हो रूप गोस्वामी, ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम बताता है कि अहो बत स्व पचतो गरीयान ये जीवाग्रे वर्त तेनाम तुभ्यम ते पुस तपस्ते जुवो शष्णुरार्य ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती एते। कि कोई भी अगर कृष्ण का नाम लेता है तो वो कितना भी पापी व्यक्ति हो बहुत ही जल्द वो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। और आप तो निरंतर कृष्ण का नाम ले रहे हो, मैं कैसे विश्वास करूं कि आप बोल रहे हो कि आप पापी व्यक्ति हो, तो मुझे विश्वास नहीं है। ऐसा करके वल्लभ भट्ट जो है रूप गोस्वामी को बोल रहे, वो होने के बाद फिर प्रयाग में महाप्रभु ने 10 दिन तक रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन प्रमुखतर कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, ये तीनों के बारे में महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया। और उनकी शिक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताते हैं कि ये कृष्ण भक्त जो है ये कितना दुर्लभ चीज है। तो बहुत फेमस श्लोक आता है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। और फिर कैसे इतने सारे जीव में, बहुत सारे जीव है जो स्थिर एक जगह पे रहते हैं स्थावर, और एक है जंगम जो मूव करते हैं, जो हिलते हैं वो है स्थावर, जंगम मतलब जो एक जगह पर रहते। उसमें से जो हिलने वाले हैं मनुष्य, उसमें सारे मलेच्छ इत्यादि गाय का मांस खाने वाले अधर्मी लोग, और उसमें से अगर चुन के निकालेंगे तो वेद का पाठ करने वाले इतने ही है जो वेद को जानते, उसमें से भी अगर फिल्टर करेंगे तो अधिकतर लोग जो है कर्मकांड उसमें निष्ठा रखते, उसमें से अगर फिल्टर करेंगे तो उसमें से कुछ लोग ही है जो ज्ञान को फॉलो करते हैं, बहुत कर्मी में से कुछ लोग ज्ञानी के स्तर पर जाते हैं, और वहां से कोई एक व्यक्ति है जो वास्तव में मुक्त व्यक्ति, और वो मुक्त व्यक्ति में से केवल एक कृष्ण भक्त है। तो महाप्रभु उनको बताते हैं कि एक कृष्ण भक्त का जो फिल्टर होके आता है इतने ब्रह्मांड में से, वो केवल इतना ही है। तो कभी भी भक्तों को हमें लगना नहीं चाहिए कि अरे, तो हर एक जो भक्त है वो बहुत ही विशेष है, इतना आसान नहीं है। मुक्तानामपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिशपि महामुने, बहुत सारे मुक्तों में से कृष्ण भक्त जो है बहुत ही गिन चुन के आता है। तो महाप्रभु रूप गोस्वामी को पहली शिक्षा बताते हैं वो है एक भक्त का महानता के बारे में, और फिर बाद में कैसे कृष्ण भक्ति चालू करना चाहिए। तो जो फेमस वर्स है, श्रवण कीर्तन चे कराए सेचन, तो एक माली का उदाहरण देते हैं कि माली जो है वो खेत को ये करके बीज डालता है और पानी डालता है, तो श्रवण कीर्तन के माध्यम से आपको पानी डालना है, और किससे बचाना है, अपराध, वैष्णव अपराध, हाथी माता। तो एक पागल हाथी अगर आ गया तो आपका बीज उखाड़ के फेंक देगा, तो हाथी माता अपराध मत करो वैष्णव के प्रति, उसके बारे में बताते हैं। फिर बोलते हैं कि एक जब बीज एक पौधा उठ के आएगा तो और भी बहुत सारे अलग अलग वैसे ही दिखने वाला पौधा आएगा, तो जो निषिद्धाचार, कुटी नाटी, जीव हिंसा, पूजा, लाभ प्रतिष्ठा, ये सब कुछ भक्ति जैसे ही लगेगा, तो एक भक्त को उसको सबको तोड़कर निकालना है। तो बड़े ध्यान पूर्वक इस भक्ति के जो पौधा है इसको उगने देना है सही तरीके से, जब भी वो इस ब्रह्मांड को भेद कर कृष्ण के चरण कमल तक नहीं पहुंचता है तब तक बहुत ध्यान से इस भक्ति लता बीज को ध्यान देना है, बिकॉज अलग अलग तरीके से अलग अलग खतरा आ सकता है। तो महाप्रभु ये सब चीज के बारे में रूप गोस्वामी को ज्ञान देते हैं, और फिर उनको बोलते हैं भुक्ति और मुक्ति, ये दोनों पिशाच की तरह है, इससे भी एक बच के रहना। ये सब बताने के बाद फिर रसस तत्व के बारे में उनको बताते हैं, पांच प्रमुख रस क्या है, सात गौण रस क्या है, वो सब के बारे में बताते हैं। और फिर बोलते हैं रूप गोस्वामी जो मैंने तुम्हें 10 दिन में बताया उसको आप जो है विस्तार करते रहो और अलग अलग किताब लिखो जिसके माध्यम से आगे आने वाली लोगों को इस चीज के बारे में आपको और ज्ञान मिलेगा। तो होने के बाद रूप गोस्वामी वहां से कुछ समय के लिए फिर वृंदावन आते हैं, और जैसे ही वो वृंदावन में आते हैं तो सुबुद्धि राय वहां पर होते हैं, वो रूप गोस्वामी को वहां पर निमंत्रण करते हैं और रूप गोस्वामी को बोलते हैं कि मैं आपको पूरा 12 वन का एक परिक्रमा कल कर लेके आता हूँ। तो सुबुद्धि राय रूप गोस्वामी को सारा 12 वन की परिक्रमा में सब जगह लेकर जाकर सुंदर वहां पर उनको बताते हैं। वहां पर रूप गोस्वामी को वृंदावन में मन में विचार आता है कि मैं जो है एक ड्रामा लिखूंगा जहां पर कृष्ण का जो वृंदावन और द्वारका ये दोनों लीला के बारे में मैं ड्रामा लिखूंगा, ऐसा करके उनके मन में विचार आता है। लेकिन फिर कुछ 1-2 महीना रूप गोस्वामी रुकने के बाद वो सोचते हैं अभी मैं जगन्नाथ पुरी जाकर फिर वहां पे जब वृंदावन आऊंगा उस समय पर लिखूंगा। तो फिर वो जब वहां से उड़ीसा जाने के लिए निकलते हैं तो वहां पर एक जगह है सत्यभामापुर करके, तो उस स्थान पर जो है सत्यभामा वो आकर रूप गोस्वामी के सपने में आती है और उनसे कहती है कि अगर आपको ड्रामा लिखना है तो वृंदावन और द्वारका ये दोनों लीला को आप अलग कीजिए, एक साथ मर मत लिखिए, क्योंकि कृष्ण एक ही है लेकिन दोनों जगह पर जो अलग अलग उनका भावना है तो इसके लिए आप उसको मिक्स मत कीजिए। फिर वृंदावन से वो जगन्नाथ पुरी जाते हैं और जगन्नाथ पुरी में भी बहुत सारी लीलाएं रूप गोस्वामी की आती है, लेकिन प्रमुख हम 1-2 चीज़ वहाँ पर देखेंगे और उसके बाद आगे का फिर कभी ये करेंगे। तो वहाँ पर वो जब जाते हैं खासकर जब महाप्रभु पुरी में जो लीला है बहुत सारी लीला है, लेकिन प्रमुख कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जब रथ यात्रा के सामने जब महाप्रभु नृत्य करते हैं सब लोगों को ऐसे लगता है कि महाप्रभु एक ऐसा कुछ बोल रहे हैं जो एक साधारण एक लड़का और लड़की जो इस भौतिक जगत में प्रेम करते हैं वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ऐसा करके आप वही प्रेमी हो, मैं वही प्रेमिका हूँ, ये वही चैत्र का मास है और वही कदम का वन है जहाँ से सुंदर खुशबू आ रही है, तो कोई भी इसके अर्थ को नहीं समझ रहा था, एक साधारण लव स्टोरी की तरह लग रहा था। लेकिन जब रूप गोस्वामी ने उसको सुना तो उसको एक उन्होंने लिख कर अपने घर के जो ऊपर जगह था झोपड़ी के वहाँ पर उन्होंने रख दिया, और महाप्रभु ने जब उसको पढ़ा और देखा तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बुलाकर पूछा कि ये कैसे संभव है कि मेरे हृदय में जो था रथ यात्रा के समय पर वो रूप गोस्वामी को पता चला। तब महाप्रभु ने जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी का कहा कि अगर आपने रूप गोस्वामी कृपा नहीं किया तो कोई भी आपके हृदय को नहीं समझ सकता है, तो आपकी ही कृपा से रूप गोस्वामी को आपके हृदय की बात पता चली, वो एक लीला होती है। और दूसरी बार रूप गोस्वामी जब जाते हैं तो वो एक कुछ श्लोक लिखते हैं, तो महाप्रभु उस श्लोक को देखते हैं और बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, और महाप्रभु बोलते रूप गोस्वामी इसको गाकर सुनाओ आप, ये मुझे बहुत आनंद आ रहा है ये श्लोक पढ़कर। तब रूप गोस्वामी उस श्लोक को गा के सुनाते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्णा क्रोध घतम बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहं चित्त प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रिजाना कृतिम नो जाने जनिता कियद्भिरमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयम्। तो रूप गोस्वामी लिखते हैं कि कृष्णेति वर्णद्वयम्, जब मैं भगवान कृष्ण का नाम जपता हूँ, ये दो नाम कृष्णा तुंडे तांडविनी, जब मेरे कान में ये जो जाता है तो मुझे लगता है कि मेरे दो कान नहीं होने चाहिए, मेरे हजारों कान होना चाहिए, और ये जब मेरे मुंह में आता है मुझे लगता है कि मेरा एक मुंह नहीं होना चाहिए, मेरे हजारों मुंह होने चाहिए, और ये दो दो शब्द है कृष्ण, ये जब मेरे हृदय में आता है तो मेरा हृदय आनंद से प्रफुल्लित होता है। तो महाप्रभु ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सभी भक्तों को बुला के बार बार वो बोलते हैं, रूप गोस्वामी वो दो श्लोक जो आपने लिखा रथ यात्रा के सामने वाला और ये हरि नाम की महिमा गाते हुए, ये दोनों को आपको वापस बताना है। और रूप गोस्वामी नहीं 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 बोलते हैं, उनको शर्म आती है, लेकिन महाप्रभु बार बार भक्तों के सामने बुलाकर उनसे दो श्लोक बुलवाते हैं और सारे भक्त लोग सुनकर बहुत आनंदित होते हैं कि ऐसा गहरा मतलब हरिनाम का और रथयात्रा के बीच में जो चल रहा है वो श्लोक का गहरा अर्थ केवल रूप गोस्वामी ही जान पाते हैं। तो सारे भक्तों ने बहुत आशीर्वाद दिया रूप गोस्वामी को कि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति है जो महाप्रभु के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकता है तो वो रूप गोस्वामी है। ऐसी बहुत सारी लय जगन्नाथपुरी में होती है, फिर वृंदावन में भी होती है, लेकिन संक्षिप्त रूप में हम देखते हैं कि कैसे रूप गोस्वामी की कुछ लीलाओं से ही महाप्रभु ने पहले ही सबको बता दिया। खासकर जगन्नाथपुरी में ये दो लीला हुआ तो उससे ही महाप्रभु ने सबको बता दिया कि आगे चलने के लिए जो हमारा परंपरा है उसके लिए मैंने रूप गोस्वामी को पहले ही चुन दिया है और वही आगे चलकर अपने किताबों के माध्यम से और अपने आचरण के माध्यम से, जैसे हम जानते हैं महाप्रभु का चार कार्य था जो उनको गोस्वामी से करना था, वो था कि वृंदावन का जो लुप्त तीर्थ स्थान है उसको पुनः जागृत करना, मंदिर बनाना, तो रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद विग्रह को आगे चलकर वृंदावन में जाकर उसको प्रकट किया, और राधा गोविंद मंदिर जो आगे चलकर फिर राजा मान सिंह जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे उन्होंने बनाया, और अलग अलग तीर्थ स्थलों को ये किया। तीसरा था किताब लिखना, किताबें भी रूप गोस्वामी ने लिखी, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल मणि, नीलमणि, दालकिनी कमोदी, ऐसे कई सारे किताबें रूप गोस्वामी ने लिखा, और अपने आचरण से सिखाना वैष्णव क्या है वो भी रूप गोस्वामी ने अपने वैष्णव सदाचार उसके माध्यम से सिखाया। तो ये चारों इच्छा का महाप्रभु का जो था वो रूप गोस्वामी ने उसको पूरा किया। तो इसीलिए हम देखते हैं कि वास्तव में रूप गोस्वामी की कृपा से ही आज जो हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा चल रहा है। प्रभुपाद जी भी अमेरिका जाने के पहले राधा दामोदर मंदिर में रोज रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते थे कि रूप गोस्वामी मैं कैसे जाऊंगा अमेरिका, 70 साल की उम्र में मैं क्या इनको बताऊंगा। तो प्रभुपाद बताते हैं कि रूप गोस्वामी स्वयं आए और बोले भक्तिवेदांत स्वामी आप केवल जाइए, आगे का जो कार्य है हम आपके माध्यम से सब करेंगे, तो आप केवल एक कठपुतली बनिए, बाकी का सब हम संभालेंगे। तो प्रभुपाद बोलते थे रूप गोस्वामी समाधि से बाहर आकर उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मुझे केवल जाना है, इसलिए प्रभुपाद ने बोला हाँ नाचाओ नाचाओ प्रभु, नाचाओ से मति काष्ठेर पुतली जाता, क्योंकि रूप गोस्वामी ने कहा था कि आप जाओ और केवल नाचो, मैं जैसा आपको नचाऊंगा आप नाचते रहो और आगे सब हो जाएगा। तो हम जानते हैं प्रभुपाद जी भी अमेरिका जाने के पीछे जो उनका प्रधान जो कृपा था राधा दामोदर मंदिर में वो श्रील रूप गोस्वामी ने उन्हें दिया, जो शक्ति को लेकर प्रभुपाद जी अमेरिका गए और फिर इतिहास गवा है हम देख रहे। तो आज के इस पावन दिवस पर हम श्रील रूप गोस्वामी के चरण कमलों पर प्रार्थना करेंगे कि हम भी जो उनकी शिक्षाएं है प्रमुख रूप से उनकी किताबों के माध्यम से, भक्ति रसामृत सिंधु खासकर वो एक किताब जो हम सबके लिए प्रमुख है उसको हम अच्छे से पढ़ के समझ कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, और एक दासानुदास के भाव में उनके बताए गए जो आदेश है उसको हम अपने जीवन में पालन करके इस महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाने का हमारे शक्ति के अनुसार हम प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील रूप गोस्वामी पाद की, श्रील प्रभु पाद की, निथाय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।